ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते भनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सत गुरु बाबा ने बहुत वैराग्य दिलाया है, बेहद का वैराग्य बाबा हमें दिलाते हैं। अंत का दृश्य कैसा होगा वो बाबा ने बताया, तो वो अंत का दृश्य देखने के लिए हमें बहुत महावीर बनना है, नहीं तो वो दृश्य अंत का देख नहीं सकेंगे। कैसा होगा वो तो मुरली से सुनेंगे अंत का दृश्य, लेकिन महावीर बनना है, क्योंकि अगर महावीर नहीं होंगे तो क्या होगा। हाँ, जैसे किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसके रिश्तेदारों को अंदर नहीं देखने देते हैं, उनको बाहर ही बिठाते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदार क्योंकि मोह के वश है तो वो देख नहीं सकेंगे, इसलिए उनको दिखाते नहीं है। ना हो सकता है आजकल तो बाहर से कुछ देखते हैं, परंतु दिखाते नहीं है। वैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है क्योंकि खून खून चारों ओर और काट कूट न जाने क्या क्या होता है। तो बाबा कहते हैं वो देखने के लिए कितना महावीर बनना होगा, और महावीर बनने के लिए क्या करना होगा, पूरा देही अभिमानी बनना होगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान होगा तो वो अंत का दृश्य देख नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज रोज देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, इसकी ताकीद करते रहते हैं, क्योंकि तीन प्रकार के भान हैं, वैसे चार कहें चार है। एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान, और तीसरा है देह अहंकार, और उस सबके विरुद्ध है देही अभिमानी। तो बाबा कहते सतयुग में भी देह भान तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि आत्मा ने शरीर धारण किया है तो देह भान तो होगा ही कि ये फीमेल का शरीर है, ये मेल का शरीर है। तो एक देह भान है वो देवताओं को भी होगा, लेकिन देह अभिमान नहीं होगा, क्योंकि देह अभिमान है विकारों की जड़। तो द्वापर से ये देह अभिमान शुरू होता है, तब विकारों की प्रवेशता होती है, और अभी तो क्या है, अभिमान से भी बहुत आगे देह अहंकार। इतना अहंकार है मनुष्यों को जो विकारों की भी चरम सीमा है। तो देखो उस अहंकार को खत्म करने लिए फिर मनुष्य सत्संग करते हैं, लेकिन कितना भी सत्संग करते हैं तो क्या होता है, देह अभिमान में ही है, सुनाने वाला भी देह अभिमान में है और सुनने वाले भी देह अभिमान में है, तो क्या होगा, देह अभिमान तो खत्म होता नहीं है। लेकिन बाबा हमें देही अभिमानी बनाते कैसे, क्योंकि खुद बाबा कहते हैं देह भान से भी परे हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है। वो जो साधु संत जो सुनाते उनको अपना शरीर तो है, लेकिन बाबा को अपना शरीर ही नहीं है। तो देखो कैसे बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनने के लिए कितनी युक्तियां बताते हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। आज 27/8/2026 है। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। हम कहाँ रह खड़े हैं, संगम पर, जहाँ एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और दूसरी ओर नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो अब इस बेहद कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए क्या करो, नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। कौन चल सकेंगे उस नई दुनिया में? जो पवित्र होंगे। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? बाबा ने आके जो ज्ञान दिया है आत्मा का, परमात्मा का, बाबा कहते ये मनुष्यों की समझ से ही पार है, उनको पता ही नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और परमात्मा एक बिंदी है, छोटा सा स्टार है, ये तो बिल्कुल उनकी समझ से पार है। और वो ही बाबा कहते हैं सत्य ज्ञान है। तो परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। अब कई है जो कहते हैं वो ज्योति बिंदु को कैसे क्या देखना है, ज्योति बिंदु क्या करना है, वो ज्योति बिंदु खिसक जाता है, जैसे पारा खिसक जाता है तो वो ज्योति बिंदु खिसक जाता है। तो बाबा कहते हैं वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। अब ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। अब कई बच्चे भी इसमें मुंह जाते हैं, कैसे ज्योति बिंदु को याद करें, क्योंकि मोटा मोटा रूप देखने की आदत है, शिवलिंग भी देखेंगे तो मोटा रूप है शिवलिंग का, हाँ, तो इसीलिए वही बुद्धि में आता है, अगर शिव बाबा भी याद आता है तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं याद करना है। पर फिर भी अगर नहीं बिंदु रूप याद कर सकती हो तो क्या करो, देखो बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे भी इसमें मूंज जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत, वो बिंदु कैसे याद करे कैसे याद करे कहते हैं, बाबा कहते हैं मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। बाबा मना नहीं करते, चलो वो शिवलिंग याद आता है ठीक है, फिर चलो अगर बिंदु को याद भी करना है तो कैसे याद करो बिंदु को, परमधाम को याद करो पहले, उस बेहद का महतत्व को याद करो, फिर उस महतत्व में वो बिंदु आत्मा है वो याद करो, शिव बाबा बिंदु मैं भी बिंदु उस बेहद के महतत्व में हूँ, ऐसे याद करो। तो आज बाबा ने वो भी युक्ति बताई है, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, पर याद जरूर करना है, ऐसे नहीं कर सकते तो छोड़ देना, नहीं याद जरूर करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, हाँ, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता है कि सब आत्म अभिमानी होकर बैठो, ऐसे कहीं भी समझाया नहीं जाता है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्म अभिमानी हो बैठो, ये एक बाप ही समझाते हैं, और किसको कहने आएगा ही नहीं, क्योंकि वो भी देह अभिमान में तो है ही ना, मैं साधु हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो वो भी थोड़ा अभिमान तो आता ही है। तो बाबा कहते और किसको ऐसे कहना आएगा ही नहीं, ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कभी डॉक्टर बनती है, आत्मा ही अभी पतित बनी है फिर पावन बनेगी, आत्मा में ज्ञान धारण होता है, बाप निराकार ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। जो जिसका पार्ट है वो पार्ट बजाएगा, जो जिसमें विशेषता है वो विशेषता उसकी वर्णन होती है। तो बाबा कहते हैं बाप निराकार ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे ना। जिसकी जो महिमा है उस अनुसार वो कर्तव्य करेंगे ना। वो है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज अब तुम्हारी आत्मा धारण करती है तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं, चले जाओ संसार में चक्र लगाओ देखो, और कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। सुनने वाले भी देही अभिमानी हो सुन रहे हैं, और सुनाने वाला भी पूरा देही अभिमानी हो सुना रहा है। भगवान तो है ही देही अभिमानी, बाप तो है ही निराकार। वो आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही दे अभिमानी। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे इनके लिए, ये आत्म अभिमानी थे। आत्म अभिमानी तो थे ना, आत्मा का ज्ञान तो था। खास करके जब शरीर छोड़ने का वक्त आता है तो पूरे आत्म अभिमानी थे। अब ये आत्म अभिमानी तो थे, फिर भी देह भान तो रहता ही है। देवताओं में भी देह भान तो रहेगा ना, क्योंकि मैं श्री नारायण हूँ, ये देह भान होगा, भले उसका अभिमान नहीं होगा, देह भान तो रहता है ना। अब ये ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को ही धारण करना होता है ये ज्ञान। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का क्या है इस समय, बाबा कहते हैं डाउनफॉल, डाउनफॉल गिरती कला। अभी सारी दुनिया का इस समय डाउनफॉल है, फिर क्या होगा, फिर राइज होगा, फिर उत्थान होगा, फिर राइज होगा। तो बाप आकर के राइज करते हैं। हाँ, उत्थान कौन कर सकता है, अपने आप तो नहीं होगा, तो भगवान को आना पड़ेगा राइज करने लिए, उत्थान करने लिए। फिर राइज करने बाप को आना पड़ता है। ये तुम बच्चे जानते हो, डाउनफॉल माना गिरावट माना डिस्ट्रक्शन विनाश, और राइज माना उत्थान माना कंस्ट्रक्शन, है ना। राइज और फॉल, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, ये तो होता ही रहता है। स्थापना और विनाश, स्थापना किसकी, नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी क्या है, विनाश तो चाहिए पर उसकी निशानी क्या है, क्योंकि कल्प पहले भी हुआ है विनाश, तो उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी है ये महाभारी महाभारत लड़ाई, ये विनाश की निशानी है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं, कैसे सब मर गए, कौरव सारे मर गए, तो ये महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे। ये है बेहद का विनाश, और फिर बेहद का विनाश, और फिर बेहद की स्थापना, दोनों ही बेहद। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं बाबा। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है, कहते हैं ये भी वही समय है जो महाभारत की लड़ाई लगी थी, वो नौ ग्रह मिले थे, अभी भी वही समय है, ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। अब इस सीढ़ी में भी लिखा हुआ है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए, वो सीढ़ी के चित्र में बाबा करेक्शन करते रहते थे, तो चित्र में ऊपर लिखा है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी, तो बाबा कहते उसमें क्या एडिशन करो, इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। कल्प कल्प में कैसे ये राइज होता है फिर फॉल होता है। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो क्या हो गया है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब कुछ है लेकिन मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है, तो क्या हो गया उनकी बुद्धि को, उनकी बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। अब गॉडरेज का ताला तो गॉड ही आके खोलेगा ना, तो एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है, हाँ जानते नहीं है पर जानना है, इसलिए देखो कुंभकर्ण का चित्र दिखाते हैं, जागो जागो, हाँ तो जगाने के लिए बाबा के बच्चे जाते हैं चारों ओर। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु, कौन है, क्या क्या एक्टर्स है, क्या क्या पार्ट है, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक का पता पड़ गया है। बाप द्वारा ये नॉलेज सारी अब इस समय मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। भगवान आकर रूहानी, बाप आके रूहानी नॉलेज देते हैं। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है, उनको फिलॉसफी कहेंगे, वो कहेंगे भाई दर्शन शास्त्र ऐसे कहते हैं। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है, बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं परंतु पतित कोई भी वापस जा न सके, पतित हम जाते हैं वापस लेकिन पतित नहीं जा सकते, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं, समझते इससे हम वापस जाएंगे, नहीं तो क्यों करे वो, तो जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं, पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई भी जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, फलाना ज्योति ज्योत समाया, तो बाप ने समझाया है वापस कोई जाता नहीं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, सब आ गए हैं स्टेज पर, नाटक पूरा होता है, अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि बोधि क्रिश्चियन आदि कहाँ है, हा? तुम समझते हो यानी बुद्ध कहाँ है, क्राइस्ट कहाँ है, ये सब धर्म पिताएं कहाँ है, तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो, सब अभी यही है, धर्म स्थापक भी यही है, लेकिन भिन्न भिन्न नाम रूप में। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वो सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं, कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। गीता में है ना, ये ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बनते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। बाबा कहते हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब ये श्री कृष्ण नहीं कह सकता है, पर गीता में है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण कैसे बनाएगा, वो तो स्वयं राजकुमार है, वो राजा बनता है, वो कैसे राजाओं का राजा बनाएगा। तो बाबा कहते हैं ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर तो बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो। कब बुलाते हैं भगवान को, जब सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, ऐसे नहीं कि एकदम सब खत्म हो जाता है फिर नए सिर बैठ करके मैं सृष्टि रचता हूँ, नहीं। जैसे दिखाते हैं शास्त्रों में तो ऐसे दिखाया है ना, सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, प्रलय हो गई। तो जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। प्रलय कभी होती ही नहीं है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। बाप ही आकर श्री कृष्ण पुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म। कैसे दिखाते हैं, दिखाते श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। प्रलय हो गई, फिर श्री कृष्ण सागर पर पीपल के पत्ते पर आया। अब ये तो ठीक बात है, बात तो ठीक है, विनाश हुआ और भारत तो बच गया। और भारत कैसा बन जाता है, पीपल के पत्ते की तरह। जो भी धरती है वो कैसे जुड़ करके एक पीपल का पत्ता बन जाती है, और वहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि सागर से निकल आता है बच्चा। तो बाबा कहते हैं बात तो ठीक है, नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं। सागर पर नहीं आते हैं, वो पत्ते पर कैसे बैठेगा छोटा बच्चा, और सागर से कहाँ से निकला। तो बाबा कहते सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते, दिखाते ना पैर का अंगूठा, हाथ का नहीं पैर का, माना बिल्कुल जैसे शैया पर लेटा हुआ। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, है ना। गर्भ जेल में जैसे हाथ जुड़े हुए उनके, और वो कहते हमको गर्भ जेल से निकालो। गर्भ में जो बच्चा होता तो गर्भ से निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण के दुनिया में पाप ही होते हैं, भले कहते हैं पाप नहीं करेंगे, वायदा करते हैं गर्भ जेल में, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वहाँ कर देता है। माना वहाँ की बात वहाँ रही, अब यहाँ की बात यहाँ, है ना, भूल जाता है सब गर्भ के वायदे। तो बाबा कहते हैं परंतु रावण की दुनिया में पाप ही होते हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। जेल बर्ड्स कैसे, चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते, फिर भी चोरी करते रहते, फिर जेल में जाना पड़ता है। 6 महीने की सजा मिली, कहीं पकड़ा गया चोरी की तो सजा मिली 6 महीना, फिर 6 महीना जेल में गया, बाहर तो उसको कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो फिर चोरी करेगा, फिर पकड़ा जाएगा, तो उसके बाद 1 साल की सजा, फिर चलो 1 साल के बाद वापस आया, अभी क्या करेगा, कुछ है ही नहीं धंधा, फिर चोरी करेगा, फिर 2 साल, तो ऐसे जेल बर्ड्स हो जाते, सदा जेल में ही रहते हम। तो बाबा कहते हैं जेल में जाना पड़ता है, इसीलिए जेल बर्ड्स कहते हैं, वो है ही पिंजरे के पंछी। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, वहां तो ये बातें होती नहीं है, वो है ही राम राज्य, वहां न गर्भ जेल है न वो जेल है, सरकार का जेल न वो जेल है न गर्भ जेल है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं, सचमुच देखा है कैसे जेल में पड़े रहते हैं, हम राखी बांधने जाते थे, बहुत गए हैं, जेलों में भी गए हैं, तो मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वो भी जेल है, ये दोनों प्रकार का जेल है, डबल जेल है, कलयुग का अंत है ना। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है, हर कल्प राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पाठ है भारत का, गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना, बहुकाल अलग रहे आत्मा परमात्मा, तो कितना काल आत्मा परमात्मा अलग रहे, तो हिसाब चाहिए ना, कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही है। तो पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पाठ बजाने, अभी वो देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं, फिर उनके चित्र निशानियां रहती है, राजाई तो खत्म हो गई, हाँ देवताओं की राजाई भी खत्म हो गई, फिर द्वापर की भी और राजाई भी वो भी खत्म हो गई, कलयुग की भी राजाई खत्म, प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो बाबा कहते राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो फिर हेवन बनता है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और फिर हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए, नई दुनिया में आना है तो बच्चे चाहिए, कौन आएंगे नई दुनिया में, तो भगवान के जो पक्के बच्चे बनते हैं वो नई दुनिया में आते हैं, बच्चे चाहिए, रहने वाले भी तुम हो उस नई दुनिया में, पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े, नई दुनिया में चलना है हाँ, तो बाबा कहते पहले दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, फिर क्या कहते हैं, भगवान आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं, तो अभी मूत पलीती है सब विकारी है, तो भगवान आकर उनको धोते हैं, फिर वो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। भगवानों वाच ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ये इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है, ये अच्छी रीति समझना भी चाहिए फिर समझाना भी चाहिए, पवित्रता की बात भी समझानी चाहिए अच्छी तरह, हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं, ये बताओ सबको, ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म हम पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं, बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चे समझकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, ये वही महाभारत की लड़ाई है, और उसके लिए अब स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, पर स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी होगी तब जा सकेंगे, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना ही है, अवश्यम भावी हा? इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, उसके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है, अब बाबा विनाश की बातें सुनाते हैं। विनाश होता है फिर तो, जिस समय विनाश होता है तो क्या क्या होता है, बाबा कहते बात मत पूछो। कैसा स्वरूप होता है विनाश का, बात मत पूछो। हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। जे फिर बाबा ऑपरेशन का मिसाल देते हैं, कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग तो ठहर नहीं सकते हैं, गिर भी पड़ते हैं। वो कहे नहीं नहीं मुझे तो देखना ही है कैसे ऑपरेशन होता है। चलो उसको अंदर ले भी जाते हैं तो खून 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 देखते हैं तो वो गिर भी पड़ते, बेहोश भी हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को, उनके परिवार वालों को अंदर अलाउ नहीं करते हैं, है ना, ऑपरेशन थिएटर में अलाउ नहीं करते हैं। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, वो एक ऑपरेशन में भी वो ठहर नहीं सकते, और ये तो कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, सबका ऑपरेशन होगा, सबकी, हाँ बाबा कहते हैं ये खून की नदियां बहेगी, सबका ऑपरेशन होगा, बहुत भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। हाँ फिर बाबा ज्यादा नहीं बोलते, फिर बाबा सतयुग में ले जाते, हाँ फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं भविष्य में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, तो गार्डन ऑफ अल्लाह माना भगवान आकर फूलों का बगीचा स्थापन करते हैं, एक एक देवता एक एक फूल के समान है। तो फिर ध्यान में भी गार्डन ही देखते हैं। बाबा ने मिसाल दिया ना वो पठान का, वो पठान बाबा को देखता था, वो पहरेदार था, वो पहरे वाला था उस समय, तो वहां पर वो पहरे पर रखते थे पठानों को, और जैसे बाबा सामने आता था बाबा से दृष्टि लेता था, और दृष्टि लेकर एकदम ध्यान में चला जाता था, फिर वापस आता था, कहता है मैं तो, मुझे तो अल्लाह का बगीचा दिखाई दिया, अल्लाह ने मुझे फूल दिया। तो बाबा कहते हैं तो गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, अब बैठे बैठे अनौदा भक्ति, बहुत भक्ति करते हैं, हाँ भगवान दीदार कराओ दीदार कराओ, अपना दर्शन दो। चलो भगवान ने दर्शन दिया, फिर कहेंगे वो तो सर्वव्यापी था, यहाँ मौजूद था तो हमको दर्शन दिया। तो साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। हाँ फिर बाबा भविष्य की बात करते हैं, बच्चे जिस पोशाक में, अब ड्रामा की बात, बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं, अब ये वस्त्र पहन करके बाबा के सामने आए हैं, बाबा से मिल रहे हैं, जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे बाबा से मिलने। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं, बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो, तो कहते हाँ बाबा आपसे कल्प पहले आगे भी ऐसे ही मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। तो फिर बाप पूछते हैं, फिर दूसरा प्रश्न पूछते, अच्छा वर्षा लेने आए थे तो बाप पूछते क्या मर्तबा पाया था, वर्षा तो लेने आए बाप से, चलो ऐसे ही मिले थे कल पहले भी, अभी मिल रहे हैं, पर वर्षा क्या पाया था। बाबा मम्मा कहते हो, ये मेरे बाबा मम्मा है तो जरूर उनों के घराने में आएंगे, ये तो निश्चित हो गया। बाबा मम्मा से मिले, उनको माता पिता कहा तो उनके घराने में आएंगे। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ, केवल आना बड़ी बात नहीं है पर ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर लड़ाई भी है, नरक का विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बहुत फर्स्ट क्लास है। ये कौन सा चित्र बाबा ने अभी याद किया, ये श्री कृष्ण के दो गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। दो गोले, एक स्वर्ग का गोला हाथ में हथेली पर और नरक के गोले को लात मार रहा है श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण के दो गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है, तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग के तरफ, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, जहाँ जाना है वह उसको याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया को भूलना और घर को याद करना, नई दुनिया को याद करना, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुराना सब कुछ भूलना, बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। कैसे जाएंगे? याद की यात्रा से ही जाएंगे, याद की यात्रा से ही जाएंगे। तो मुख्य है ही याद की बात, याद तो सब करते ही है ना, सब बच्चे बाबा को याद करते हैं। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे कैसे याद करो। याद तो करते हे भगवान हे भगवान, वो तो कहते रहते हैं, पर यथार्थ याद क्या है वो बाप बताते हैं। ये है अव्यभिचारी याद, शिव बाबा की याद अव्यभिचारी याद है। सो भी अर्थ सहित उसके सच्चे स्वरूप को पहचान कर उनको याद करो, और सच्चे अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदु समझे, मैं भी बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, बाप को भी बिंदी समझे। तो ये नई बात देख भूल जाते हैं बच्चे, वो मोटा रूप शरीर का वही दिखाई देता है, फिर बाबा को भी उसी रूप में देखते हैं। तो नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी बहुत छोटी लगती है, हाँ वो बिंदी को याद करना मुश्किल है, तो फिर घर तो बड़ा है ना, तो घर को भी याद करो और उस घर में फिर बिंदी को याद करो। घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं, फिर बाबा को याद करो, घर को याद करके बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे, हम तुम शिव बाबा और हम बच्चे वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है, अच्छा घर तो याद पड़ेगा ना, वो है शांति धाम, फिर सतयुग है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बाप के, हाँ बाबा कहते बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। भगवान विश्व का मालिक बनाता है, स्वर्ग का राजा बनाता है, तो हमको विश्व की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। तो बाबा याद दिलाते हैं। तो बाप कहते हैं अभी फिर आया हूँ तुमको देने। कितनी बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, कितनी बार? अनगिनत बार, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? अनगिनत बार उस बाप से वर्षा लिया है स्वर्ग का, फिर भी उस बाप को भूल जाते हो। माया के तूफान से बड़ी लड़ाई होती है, हाँ माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसीलिए नाटक भी दिखाते हैं। कौन सा नाटक दिखाते हैं? हाँ, माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं, माया और प्रभु की लड़ाई। तो माया इस तरफ खींचती है, प्रभु उस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो, महारथी बनो, महावीर बनो, महारथी भी बनो, महावीर भी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना पड़े। अगर महावीर नहीं बनेंगे, इतने मजबूत स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तो वो विनाश कैसे देखेंगे। तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। ऐसा अडोल स्थिर एक रस अखंड अटल अडोल रहना है। तो बाबा कहते जो माया कुछ भी कर न सके, ये है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। उस समय माया तुमको कुछ भी कर नहीं सकेगी, पर उनको नहीं कर सकेगी जो सचमुच महावीर होंगे। ये तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था है। अब ट्रांसफर होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तो तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। अब एक तरफ बाबा विनाश की बात करते हैं, फिर बाबा कहते हैं बच्चों को उस समय बहुत साक्षात्कार होंगे, फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये राजा बनेगा, सबका साक्षात्कार होगा। होता है ना, जब एग्जाम्स होते और जब रिजल्ट आउट होती है, तो रिजल्ट आउट हो जब होती है सबका पता चल जाता है, क्योंकि जिस जिसका रोल नंबर उनको मालूम है, वो रोल नंबर देखती है तो पता चल जाता है ये फर्स्ट क्लास में आया, ये सेकंड में आया, ये थर्ड में आया, तो पता चल जाता हर एक का। हाँ, ये फलाना बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, क्या कर सकेंगे, रिजल्ट आउट हो गई, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। हाँ, उस समय ऐसे कहेंगे। परंतु अंत समय में कुछ भी हो नहीं सकेगा, ऐसे बहुत पछताएंगे, पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं ना, होता है ना, बहुत गुस्से में आके उसका उसको मार डाला, फिर कितना पछताता है कि कैसे अब ये जो भी है एविडेंस वो सब खत्म करें, तो बहुत डर लगता है। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, सोच समझ कर कर्म करो, बिना सोचे समझे मत करो, क्योंकि क्या परिणाम होगा उसका पता ही नहीं है। तो इसलिए पहले सोचो, फिर समझो उसका परिणाम क्या होगा, फिर करो। तो बाबा कहते हैं फिर क्या कर सकेंगे, अगर सोचा समझा नहीं और ऐसे ही कर लिया तो फिर क्या कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अंत में अपना पुरुषार्थ करते रहो, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापिस घर चलना है, इसीलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर, है ना, रिसाव होता है ना व्यर्थ का, व्यर्थ संकल्प आना माना समय श्वास संकल्प शक्ति सब व्यर्थ, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना, जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो मेहनत करो लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते, इसीलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। चैलेंज हम चुनौती देते हैं मनुष्यों को, चैलेंज करते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हम संपूर्ण पवित्र रहते हैं, तो प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। यह व्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अब बाबा इस पर कितना जोर देते हैं, परमात्म ज्ञान की नवीनता है पवित्रता, ये परमात्म ज्ञान की नवीनता है पवित्रता। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग लग नहीं सकती, ये फलक से कहते हो। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते हैं। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल में लाओ कि बाबा हाँ पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते हैं। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा।
ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सब मिल करके प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो यहाँ आप सबको सुनाया जाएगा और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। पहले भट्टी के भाई हाथ खड़ा करें। अच्छा, भट्टी के भाई अमृत के लिए बीच में यहाँ आएंगे, यहाँ बीच का है ना, यहाँ आएंगे और बाकी भाई उस स्टैंड के पास आएंगे अमृत पीने के लिए। और भट्टी की टीचर्स बहने हाथ खड़ा करें। अच्छा, भट्टी की टीचर्स बहने, फिर माताएं, इस स्टैंड के पास से जो दूसरा कैमरा है इसके पास अमृत पीने के लिए आएंगे और बाकी दो लाइनें होंगी बहनों की अमृत पीने के लिए। तो अभी हम सभी आज प्यारे बाबा के पास जाएंगे क्योंकि दो दिन से तो हम बाबा के पास मिलन मना ही रहे हैं। तो आज कौन जाएगा वतन में? थोड़े से लोग जाएंगे कि नहीं? जिनको नहीं जाना वो हाथ खड़ा कर दो। नहीं जाना? क्यों? बाबा के पास जाना, बाबा बुलाते हैं, खुश होना चाहिए ना। तो फिर से हाथ खड़ा करो जो वतन में बाबा के पास जाएंगे। करो हाथ खड़ा। ठीक है, सब जाएंगे। क्योंकि नहीं भी आएंगे ना तो बाबा देखेंगे ये बच्चे इतने लाडले हैं, बहुत मस्ती में बैठे हैं और बाबा के पास नहीं आए हैं। इसलिए सबको ही अपने शुभ संकल्पों से वतन में पहुंचना है और बाबा को भोग स्वीकार कराना है। आज कुछ भी किसी को कोई शुभ संकल्प है वो बाबा के पास रखना है और बाबा आपके संकल्पों का खुद ही जवाब देंगे। तो अभी हम सभी बाबा के पास जाते हैं और कल भी भोग लगेगा। कल राखी का भोग है, कल राखी का भोग लगेगा। तो अभी हम सभी बाबा के पास जाते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे सुनेंगे। उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा। एक लाइन होगी उस स्टैंड के पास भाइयों की और एक लाइन होगी भट्टी के भाइयों के बीच में, एक लाइन होगी यहाँ टीचर्स बहने तथा भट्टी की बहने और दो लाइनें होंगी अन्य बहनों की। अच्छा, जो भाई बहने शांतिवन से हाथ खड़ा करें। अच्छा, शांतिवन से आए हुए भाई बहने ध्यान देंगे और सभी ध्यान देंगे, भट्टी के भी और शांतिवन के भी। सभी का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन जो है ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। इसलिए सबको इस बात में सहयोग देना है क्योंकि नीचे बैठने की जगह नहीं है। इसलिए सबको नाश्ते के लिए और दोपहर के भोजन के लिए ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही जाना है। अच्छा, अभी हम चलते हैं बाबा के पास।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे।
ओम शांति। आज ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सब भाई बहनों की स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ कि चारों तरफ लाइट के किरणों से बहुत सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था, लेकिन बाबा बहुत दूरी पर खड़े हुए थे। और कुछ सेकंड के बाद मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आप तो बहुत दूरी पर खड़े हैं और हम सब वतन में आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बस बाबा शब्द कहो और देखो क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा प्यारा बाबा, तो ऐसे लगा कि मैं उड़ती हुई बाबा के पास जाकर के पहुंची और बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे आज बाबा का प्यार भरे कई संकल्पों का प्यार भरा अनुभव करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो सारे विश्व को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा क्या कर रहे थे, बाबा देख रहे थे एक तरफ प्रकृति जो है वो पुकार रही है और प्रकृति चाहती है, बाबा को बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि अब हमारे को समय बदल रहा है, अब हमें अपने संपन्न स्टेज में आना है। तो दूसरी तरफ मैंने बाबा ने दिखाया कि भक्तों की पुकार है, कब भगवान हमारी आवाज सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, जैसे बच्चे बाबा से बात करते हैं ऐसे प्रकृति, भगत और जो साइंटिस्ट हैं वे और समाज के और धर्म के सब नेताएं केवल बाबा से एक ही पुकार, एक ही आवाज कर रहे हैं कि अब हमें कुछ अनुभव कराओ, हमें कुछ प्राप्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा, तो एक तरफ प्रकृति, एक तरफ भगत, एक तरफ समाज और देश के बड़े बड़े, और एक तरफ समय, और एक तरफ धर्म, और जो नई दुनिया के संस्थापक हैं वैसा बाबा की तरफ देख रहे हैं। तो बाबा खड़े हैं और चारों तरफ सामने, बाबा के सामने वो भिन्न भिन्न रूप में संपन्न रूप में दिखाई दिए। प्रकृति बहुत ही सुंदर हयाली और भगतों को ऐसे साक्षात्कार हो रहा था, लाइट की किरणें पहुंच रही थी और वो कह रहे थे कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। इसी प्रकार से वो सभी भी ऐसे सब परमात्मा को थैंक्स दे रहे थे, क्योंकि वो बाबा को तो नहीं जानते हैं, परमात्मा कह करके उनको थैंक्स दे रहे थे कि बस अभी हमारे दिन अच्छे आए के आए। तो फिर बाबा ने कहा, एक तरफ बाबा बच्चों की सब प्रकार की पुकार सुनकर के, प्रकृति, भगत या अन्य सबकी पुकार सुनकर के उनको लाइट की किरणों के द्वारा अनुभव करा रहे हैं। फिर बाबा ने दिखाया कि बाबा ने वैसे ताली बजाए, सब बच्चे बाबा के सामने खड़े हो गए। तो बाबा बच्चों को पूछ रहे थे, बच्चे पुशारत तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो भक्तों की पुकार या प्रकृति का पुकार, इसका समाधान या इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो बाबा बच्चों को पूछा और सब चुप थे। बाबा आप ही बताओ। बाबा ने कहा ये बोलते क्यों नहीं है? मैंने कहा बाबा ये आपसे सुनना चाहते हैं। बाबा ने कहा बाबा ने तो बहुत कुछ सुना ही दिया है, लेकिन आज बाबा बच्चों से सुनना चाहते हैं। फिर सब बच्चे कहते बाबा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम साकाश भेज रहे हैं। तो बाबा मुस्करा रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, एक सूर्यमुखी फूल दिखाया। बाबा के हाथ में सूर्यमुखी फूल था। तो बाबा ने कहा बच्चे भविष्य में तो सूर्यवंशी बनेंगे, और इस समय मास्टर सूर्य बन करके और प्रकृति को भी परिवर्तित करना है। मास्टर सूर्य बन करके सारे विश्व की किरणें में किरणें फैला करके हर आत्मा की शुभ संकल्पों को संपन्न करना है। तो बच्चों को अभी समय अनुसार अपनी स्टेज को सूर्य समान पावरफुल लाइट और कुछ देने वाला बनना है, क्योंकि अभी लोग सुनना नहीं चाहते हैं, वो अनुभव के साथ साथ प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जैसे सूर्य के द्वारा कैसे अनुभव करते हैं, तो बच्चे जो है मास्टर सूर्य बने और सबको देते रहे, और मास्टर सूर्य बनने से ही बच्चे सिद्धि स्वरूप बनेंगे। क्योंकि क्या है, बच्चे हर बार ये सेवा करते हैं, कभी सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती। बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप में भी सेवा पुरुषार्थ की सफलता के साथ साथ जो भगत है, जो प्रकृति है, समय है या जो भी है, उनको अनुभव हो, तब वो सिद्धि स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तब तक बच्चे सिद्धि स्वरूप की स्थिति पर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए बच्चों को विशेष मास्टर सूर्य बनना है। फिर बाबा ने सब बच्चों को ऐसे प्यार भी कर रहे थे, और बाबा की दृष्टि से ऐसे लग रहा था बहुत शक्ति मिल रही है। बाबा ने कहा स्नेह के साथ अभी शक्ति की अनुभूति कराना बहुत जरूरी है, ये समय के अनुसार बच्चों को जरूर इसके लिए विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते ही, और बाबा ने फिर से कहा मास्टर सूर्य बनो, और मास्टर सूर्य बनने से ही खुद भी शक्ति का अनुभव करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे। फिर जिनके भोग थे बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने कहा सब बच्चों का याद प्यार पहुंचा है, उसके रिटर्न में बाबा भी बच्चों को शक्ति दे रहे हैं, शक्ति से भरपूर होकर उड़ते रहें। ओम शांति।